दिव्या उपन्यास का खंड दो धर्मस्थ का प्रसाद। मनुष्य समाज समय की नदी के तट पर स्थित वन समान है। समय की नदी में आने वाले प्लावन इस वन की भूमि को उर्वरा करते रहते हैं। इसी प्रकार सागल के नगर समाज में परिवर्तन के अनेक प्लावन आए और भावनाओं और अनुभूतियों के उर्वरा स्तर समाज की भूमि पर छोड़ते गए। सागल के उसी समाज रूपी वन में वायुवृद्ध महापंडित धर्मस्थ देव शर्मा कालांतर से उपस्थित महान वट वृक्ष के समान थे। उनके केश समक्ष और भृगुटी ही नहीं, शरीर के लोम भी श्वेत हो गए थे। बीतते समय ने उनके शरीर का सत्व शोषण कर उसे जर्जर कर दिया, परंतु अनुभूति के मूल तंतुओं द्वारा 100 वर्ष से अधिक समय तक समाज की भूमि से अनुभव का रस ग्रहण करते रहने से उनकी भावना सजग और प्रबल रही। महापंडित के यौवन काल में महाप्रतापी यवनराज मिलिंद ने दुर्देश यवन सेना लेकर मद्र से पौरव वंश के राज्य का उच्छेदन कर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। महाराज मिलिंद ने उनके पिता पौरव राज्य के धर्मस्थ महापंडित वागीश शर्मा का स्वर्गवास होने पर पंडित देव शर्मा की विद्वत्ता और बुद्धि के आदर में उन्हें धर्मस्थ का पद सौंप दिया था। वर्णाश्रम धर्म की नीति प्रथा और व्यवस्था में यवन पद्धति का संपुट देकर उन्होंने अनेक वर्ष तक न्याय की व्यवस्था की। प्रचंड प्रतापी मिलिंद की तथागत के धर्मचक्र में आस्था हो जाने पर महापंडित ने न्याय को सर्वभूत दया और मानवता की भावना से अनुप्राणित होते देखा। उनके ही जीवन काल में महाराज धार्मिक मिलिंद राजपाठ त्याग प्रवज्ञा ग्रहण कर निर्वाण पथ के पथिक हुए। महाराजा मिलिंद के उत्तराधिकारीहीन होने से मद्र में कुलों के गणराज्य की स्थापना हुई और महापंडित देव शर्मा नई परिस्थिति में धर्म स्थान के आसन से न्याय को परिवर्तित भावनाओं के अनुसार व्यवस्था करते रहे। महापंडित की 3 पत्नियों से 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनमें से 2 जीवित रहे। इन दोनों पुत्रों में धर्मस्य के 4 पौत्र हुए। ज्येष्ठ पुत्र से प्राप्त ज्येष्ठ पौत्र की पत्नी ने 1 प्रपौत्री को जन्म दिया, जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की संध्या में सूर्य का प्रकाश रहते भी नवचंद्र की रेखा का उदय म्लान नहीं होता, प्रकाश का वह अंकुर क्षीण होकर भी दिव्य चंद्रिका का आश्वासन लिए रहता है, उसी प्रकार धर्मस्थ के पुत्र पौत्र से समृद्ध और संपन्न कुल में कन्या का जन्म उल्लास का कारण हुआ। उस कन्या के उज्ज्वल भविष्य के विश्वास से उसे दिव्या पुकारा गया। दिव्या चंद्र की कलाओं की भांति दिन दिन दैदीप्तिमान होती गई। दुर्भाग्य से दिव्या के पितामह और पितामाता तीनों ही किसी दैव प्रकोप से व्याधि द्वारा अकाल में काल कवलित हो गए। उन तीनों के भाग का स्नेह पाकर दिव्या पितामह के समीप अत्यंत वत्सल हो गई। बहुदृष्टा उदार महापंडित धर्मस्थ का संपन्न प्रसाद प्राचीन और उद्यानों से वेष्टित था। प्रचुर दास दासियों से सेवित विद्या और संस्कृति का केंद्र था। उस प्रसाद में श्रुति स्मृति दर्शन न्याय और तर्क का मंथन वर्णाश्रम नीति के पंडितों, यवन दार्शनिकों और बौद्ध भिक्षुकों द्वारा मत निर्णय और गोष्ठी सुख के लिए निरंतर होता रहता था। धर्मस्य के प्रसाद में सुरा और सुंदरी के व्यसन की अपेक्षा ज्ञान और तर्क का अनुराग अधिक प्रबल था। अतिथि युक्त और तर्क की लहरों में रजत अधरों पर स्फटिक के चस्कों में कपिसायनी सुरा लिए सम्मुख खड़ी श्याम और सिंगल दासियों को भूल जाते थे। उस ज्ञानमय वातावरण में अंतःपुर अस्थानागार और चतुश्याल के तोरणों से ताम्र और रजत के पिंचरों में लटके सुख सारिकाएँ भी परस्पर होड़ में अनेक सूत्रों और परिभाषाओं का उच्चारण करते रहते थे, अथवा वे पंछी तंद्रा दूर करने के लिए सहसा पुकार उठे, आपस्तभ्य सूत्र, काक, तलई, न्यायेण, पत्यंजलि, कौटिल्य, संक्रमणाद, संक्रमणाद्वा, नौसादिसित, नौसादिसित, नौसादासित। महापंडित धर्मस्य के स्थान में ज्ञान और कर्मकांड के प्रसंग, श्रुति स्मृति के शब्द और प्रमाण और न्याय के तर्क प्रमाण, वेदों के एकमेव द्वितीयम और नसादिवाद के लिए स्थान था। वहाँ यवन ऋषि प्लातों के प्रतीयमान जगत से परे तर्क पाप्य ध्रुव सत्य के विमर्श और तथागत के अनात्म कर्मवाद के लिए भी स्थान था। उनकी उदारता में ब्रह्मलोक और निर्वाण दोनों की ही अवज्ञा करने वाले सागल के धर्मज्ञ विप्र समाज द्वारा लांछित और तथागत के अभिधर्म द्वारा अभिसृप्त लोकायत के समर्थक केवल स्थूल प्रत्यक्ष इहलोक को सत्य और जन्मांतर में कर्मफल को असत्य बताने वाले चार्वाक मारिस के लिए भी स्थान था। धर्मस्य के न्याय द्वारा दो बार दंडित होकर भी मारिस महापंडित का कृपा पात्र था। हरिओम, हेलो, हाँ प्रणाम वेद। अच्छा अच्छा कैसे हो? हम तो सेंट्रल लाइब्रेरी में हैं यार इस समय। क्यों? हाँ ठीक का। अरे वाह क्या बात है भाई, आज मेरा हालचाल ले आ जा रहे। अरे वाह वाह, आज बहुत प्रसन्न हूँ मैं। कहाँ हो तुम इस समय? अच्छा वो तुम्हारे यहाँ पेशी का, क्या तुम्हारे पक्ष में फैसला आएगा ये मुझे मालूम है। किसका नाम दे दिए थे? कौन लोग लिखा है? वो लोग सिर्फ चार ही लोग का नाम लिखे हैं? तुम्हारा है, सौमित्र का है और किसका है? मारिस तक्षशिला से मूर्तिकला का ज्ञान प्राप्त कर सांगल में लौट मिलिंद विहार के सिंह द्वार के तोरण पर भगवान तथागत के जीवन चरित्र अंकित कर रहा था। एक दिन उसने तथागत के पूर्व अवतारों को मिथ्या विश्वास बताकर संघ स्थिवर से की प्रतिज्ञा को भंग कर जातक कथा उत्तीर्ण करना अस्वीकार कर दिया। संघ स्थिवर ने भोग लिप्सा के सुख को मिथ्या भ्रांति के रूप में दिखाने का आदेश दिया। मारिस ने वह भी स्वीकार न किया। संघ स्थिवर द्वारा धर्मस्थान में उपस्थित किए गए प्रतिज्ञा भंग के अभियोग के न्याय में धर्मस्थ ने मारिस को अर्थदंड दिया। उसी दिन संध्या समय उन्होंने अपने प्रसाद के स्थान में मारिस को निमंत्रित कर समाज में उसे अपने ही उपधान पर आश्रय स्थान देकर उसका आदर भी किया। स्वभाव से विचारक होने के नाते धर्मस्य के स्थान में मारिस का भी निरादर न था। महापंडित को किसी भी वाद के प्रति पूर्ण सत्य का आग्रह न था, न वे किसी वाद को पूर्णतः मिथ्या कह पाते थे। वेद वचन एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति ही उनका उदार मत था। इस वातावरण में प्रोषित होकर दिव्या ज्ञान कला और संस्कृति से उसी प्रकार भिजी हुई थी जैसे कमल जल से भीगा न होने पर भी उसमें जल समाया रहता है। दिव्या की विशेष रुचि संगीत और नृत्य में थी, परंतु वृद्ध पितामह के निरंतर सामिप्य से वह ज्ञान के प्रसंग से भी अबोध न थी। उसने ज्ञान को शब्द की अपेक्षा भावना में ही पाया था। गत रात्रि मधुपर्व उत्सव में विलंब हो जाने के कारण प्रातः दिव्या अपने शयन कक्ष से भी विलंब से निकली। सुखद आलस्य में सभी काम विलंबित गति से हो रहे थे। मध्याह्न से ही उसे ध्यान था कि गत रात्रि कला प्रदर्शन में सम्मान पाने के कारण संध्या समय साधुवाद देने आने वाले अतिथियों की संख्या अधिक होगी। संध्या की बात सोचकर उसका मन और शरीर पुलक से भर जाते। दिव्या को स्मरण हो आया गत संध्या उसकी शिविका में कंधा देने के गौरव के लिए आचार्य पुत्र आर्य रुद्रधीर ने खड़ग खींच लिए थे। रुद्रधीर प्राय ही धर्मस्थ के स्थानागार में अथवा संध्या के समाज में उपस्थित होते थे। उन्हें आर्य मारिस की उपस्थिति असहाय होती। मारिस से उनके तर्क में कटुता आ जाती, तात्पर्य उपेक्षा कर देते। महापृतव्य विष्णु शर्मा मारिस की उच्छृंखलता से विरक्ति अनुभव कर मौन हो जाते और पिता प्रद्युम्न शर्मा विनोद से मुस्कुरा देते। मारिस उपेक्षापूर्ण अहंकार से अट्ठास कर देता। दिव्या रुद्रधीर और मारिस के द्वंद्व से विरक्ति भी अनुभव करती और कौतूहल भी। आर्य रुद्रधीर का विवाह 2 वर्ष पूर्व हो चुका था, परंतु वे कुमारी दिव्या के प्रति भी अनुरक्त थे। आचार्य कुल के प्रति आदर का भाव होने पर भी दिव्या को रुद्रधीर की द्वितीय पत्नी बनने की कल्पना रुचकर न हुई। इसी प्रकार की स्मृतियों में वह संध्या की कल्पना कर रही थी। दासी ने संदेश निवेदन किया, तात धर्मस्य कुमारी का स्मरण कर रहे हैं। धर्मस्य ने स्नेह से दिव्या के केसों पर हाथ रखे आदेश दिया, वत्स दास संभुक ने निवेदन किया है, कोई रथारूढ़ भद्र अभ्यागत द्वार पर उपस्थित है। मैं गत रात्रि के श्रम से क्लांति अनुभव कर रहा हूँ। पुत्री अभ्यागत की अभ्यर्थना कर कुशल क्षेम और आने का कारण पूछो। दिव्या दासी के हाथों में रजत आधार पर तांबुल और अर्ध लेकर अस्थानागार में पहुंची। सम्मुख मुखद्वार से यवन सामंत के समान गौरवर्ण परंतु द्विज के समान कृष्ण नेत्र ऊंचे और वलिष्ठ शरीर क्षत्रिय वंशी युवक ने अत्यंत गंभीर मुद्रा में प्रवेश किया। युवक मूल्यवान कौशेय वस्त्रों की उपेक्षा से धारण किया था। दिव्या ने पहचाना गत रात्रि का सर्वश्रेष्ठ खड़गधारी आयुष्मान पृथ्वीसेन। दिव्या ने अभ्यागत के सम्मुख बद्ध कर नासिका तक उठाकर नमस्कार से स्वागत किया, आर्य आशत्याम, और दासी के हाथ से अर्थ आधार ले अतिथि के सम्मुख उपस्थित कर प्रार्थना की, आर्य अर्ध ग्रहण करे। क्षुब्ध अभ्यागत नमस्कार का उत्तर गंभीरता से देकर अर्ध ग्रहण करने से पूर्व ही बोला, भद्रे महाश्रेष्ठ प्रेस्त का पुत्र मैं पृथ्वीसेन धर्मस्थ के द्वार पर न्याय की भिक्षा के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। अस्थानागार के मुख द्वार के तोरण से पिंजरे में लटकी वचाल सारिका बोल उठी, न्यात पथ प्र विचलंती पदम न धीरा, जिसका अर्थ है धीरजन न्याय से विचलित नहीं होते। दिव्या के ओठों पर अभ्यागत के स्वागत में शिष्टाचार की ईर्षित मुस्कान सारिका की वचालता से हास्य में परिणित हो गई। कुमारी ने आश्वासन दिया, आर्य आर्ध ग्रहण करें, न्याय द्वार से न्याय के लिए निराश न होना पड़ेगा। अबोध सारिका भी इस सत्य की साक्षी है। मैं कुमारी के आश्वासन पर विश्वास करता हूँ, विनय से उत्तर दे। पृथुसेन ने कुमारी के द्वारा निर्दिष्ट आसन ग्रहण कर अर्धपात्र से तांबुल ले लिया। दिव्या समीप बैठकर बोली, तात धर्मस्य इस समय अस्वस्थ के कारण यदि आर्य के साक्षात्कार का लाभ न पा सकें, आर्य उन्हें क्षमा करें। पृथुसेन वृद्ध धर्मस्य के कुशल क्षेम के प्रति मंगल कामना कर संभ्रम से आसन छोड़कर खड़ा हो गया। उसने धर्मस्य की प्रपौत्री के न्याय आश्वासन के प्रति संतोष प्रकट किया। पुनः दर्शन की आशा लेकर वह लौटना ही चाहता था कि धर्मस्य के पुत्र दिव्या के महापितृव्य पंडित विष्णु शर्मा और पितृव्य प्रबुद्ध शर्मा चिंताशील मुद्रा में वार्तालाप करते हुए अस्थानागार में प्रविष्ट हुए। प्रबुद्ध शर्मा ने अतिथि का संबोधन किया, आयुष्मान, प्रबुद्ध शर्मा नमस्कार करता है। विष्णु शर्मा ने प्रबुद्ध शर्मा की ओर दृष्टि डाल अभिवादन का संकेत मात्र कर कहा, अभ्यागत की अभ्यर्थना करता हूँ। पृथुसेन विदा की आज्ञा ले चुका था। नवांगुत पितृव्यों का व्यस्त भाव देखकर उनका वार्तालाप में व्याधा न बनने के विचार से वह सत्कार का उत्तर देकर विदा हो गया। दिव्या को संबोधन कर विष्णु शर्मा बोले, दास सारथी पुत्र का तुमने अर्ध से सत्कार किया। तुम अपने पिता प्रबुद्ध शर्मा की भांति समदर्शी तथागत की शिष्या होने योग्य हो। दिव्या महापितृव्य के उपलब्ध से मौन रह गई, परंतु प्रबुद्ध शर्मा ने अपने और भातृजा के प्रति व्यंग का उत्तर परिहास से दिया, पृथ्वीसेन का पिता किसी समय दास था, आज वह उनके दासों का स्वामी, सांगल का प्रमुख श्रेष्ठी और गणपति का प्रमुख मंत्रणादाता है। सांगल में उसकी अवज्ञा कौन करता है। तात पृथ्वीसेन की भांति हाथ में चवर लेकर नहीं खड़ग लेकर आता है। क्यों दिव्ये वत्से, वह सम्मान का अधिकारी है। विष्णु शर्मा उद्विग्न हो उठे, धन संचय से सम्मान का अधिकारी, प्रबुद्ध श्रमणों और यवनों की संगति और व्यापारिक वैश्यवृत्ति की ओर प्रवृत्ति होने से तुम्हारी ऐसी मति है। धन की महिमा तुम्हारी दृष्टि से इतनी अधिक है। धन भोग्य वस्तु है, वह मनुष्य का मूल्य निश्चित नहीं कर सकता। धन के इसी गर्व के कारण विष्णु शर्मा का स्वर तीव्र हो गया। गत रात्रि इस दास पुत्र ने द्विज सामंत पुत्रों से स्पर्धा कर सरस्वती पुत्री की सीविका में कंधा लगाने का साहस किया। रुद्रधीर के वर्जने पर वह खड़ग खींचकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। ब्राह्मण के सम्मुख दास खड़ग खींचे, इस प्रकार के अनाचार से मद्र राज्य में कुलगण के शासन और वर्णाश्रम का क्या अधिकार और सम्मान रह जाएगा। प्रबुद्ध शर्मा ने पुनः मुस्कुराकर उत्तर दिया, परंतु तात मनुष्य और उसके वंश की स्थिति में परिवर्तन आता है। छत्रपति मौर्य वंश भी एक समय नापितों का कुल था, दूसरे समय संपूर्ण जम्मूद्वीप ने उनकी वंदना की। विप्र श्रेष्ठ चाणक्य ने उनकी मंत्रित्व किया। भूमि अब उस अनाचार से मुक्त हो चुकी है। विष्णु शर्मा बोले, अपनी हे स्थिति को सम्मानित बनाने के लिए ही, वर्णाश्रम का पद न्यून करने के लिए ही अशोक ने मुंडियों की शरण ली। यदि देवता मनुष्य से अधिक सामर्थ है तो देवता का अंश अग्नि को धारण करने वाला ब्राह्मण भी शूद्र के समान नहीं। अग्निमुख ब्राह्मण के श्राप से पातक ध्वंस होकर पृथ्वी पाप मुक्त हुई है। कल अभिजात कुल की स्पर्धा में इस दास पुत्र ने खड़ग खींचा था, यदि वह पीछे न हट जाता उसके रक्त से उस सर्वश्रेष्ठ खड़गधारी होने के अहंकार का प्रायश्चित हो जाता। यवन गणपति के अविचार से ही यह समस्या उत्पन्न हुई। यह मद्र के कुल गण का राज्य है, यवन मुलिंद का धर्मचक्र नहीं। नीचों को यह कहने का अहंकार, कम्भड़ा भोति ब्राह्मणो, ब्राह्मण को जिसने देवत्व दिया है केवल वही उसे अपदस्त भी कर सकता है, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। क्या वह मुंडी समय पर वृष्टि न करने के दुष्कर्म से मेघराज इंद्र को भी अपदस्त करेंगे, कहेंगे कर्मणा भवति देवो, इस नास्तिकता का दंड अब सागल में पापी की जीवा खींच कर दिया जाएगा। यह संभवतः तात के न्याय की शरण मांगने आया था, परंतु तात प्रबुद्ध शर्मा ने पितव्य के प्रति आदर के विचार से विनीत परिहास में उत्तर दिया, देवता का विधान केवल विश्वास और अनुमान की वस्तु है, जैसे देवता के अस्तित्व का प्रमाण केवल विश्वास और अनुमान है। देवता और उसका विधान अनुभव और प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ग्राह नहीं है, अनुमान अनुभव के आधार पर ही हो सकता है। यदि अनुमान अनुभव द्वारा प्रमाणित नहीं तो संदिग्ध है। उत्तेजित होकर विष्णु शर्मा ने प्रत्युत्तर दिया, यह मुंडियों का कुतर्क है, प्रमाण क्या है? आप्त पुरुष का वचन प्रमाण है, जो नहीं जानता उसके लिए जानने वाले का वचन प्रमाण है, ब्राह्मण के अधिकार का प्रमाण ब्राह्मण की शक्ति है। प्रबुद्ध शर्मा के बहुमूल्य पर बधे रत्न जनित अंगद की ओर संकेत कर उन्होंने आवेश में पूछा, क्या मूल्य है आज यह रत्न धारण करने का? प्रबुद्ध के कंधों पर पड़े उत्तरीय की ओर उन्होंने अंगुली उठाई, क्या प्रयोजन है आज यह कौशेय धारण करने का, जब दास और शूद्र भी ऐसे ही इससे भी उत्तम वस्त्रानुभूषण पहने फिरते हैं? क्या अब यह वर्ण वंश और अधिकार का परिचायक है? यदि माणिक भित्ति चुन सकने योग्य संख्या में मिल सकें तो उन्हें माथे पर ढोने का क्या अर्थ? यदि शूद्र दास भी द्विज के समान अधिकार पा सकें तो द्विजत्व क्या है? क्या ब्राह्मण के मंत्र और क्षत्रिय के शस्त्र की शक्ति शूद्र की सेवा के लिए है? विष्णु शर्मा आवेश में दीर्घ पदों से अंतःपुर की ओर चले गए। महापृतव्य के क्रोध से अप्रतिभ होकर दिव्या उंगलियों में उत्तरी का छोर लपेटती हुई भूमि पर बने तुलिका लेखन की ओर दृष्टि गड़ाए खड़ी थी। प्रबुद्ध शर्मा भातृजा को संतावना देने के लिए करुणा से बोले, वत्से, खिन्न होने का कारण नहीं, अभ्यागत का सत्कार करना ही चाहिए। पृतव्य दास पुत्र को नमस्कार करना नहीं चाहते, परंतु अभ्यागत की अभ्यर्थना तो उन्होंने भी की है, मद्य की परिपाटी की अपेक्षा आर्य कैसे करते? पृतव्य की सहानुभूति से दिव्या का क्षोभ उमड़ आया, नेत्रों में छलक आए आंसू, छिपाने के लिए उत्तरी के छोर से मुख ढके सिर झुकाए खड़ी रही। दिव्या की पीठ पर हाथ रखे प्रबुद्ध ने स्नेह की प्रतारणा की, वालिस, पृतव्य का मन उस प्रकार है तो क्षोभ का क्या कारण? मतभेद स्वाभाविक है, तात की गोष्ठियों में तूने विज्ञों को कभी एकमत होते देखा है? और उनमें मूर्ख कौन है? आचार प्रवर्धन या पंडित, इकृद या अहर्त, धर्मरक्षित या चिविक या आर्यमार्यश? दिव्या ने आंसू पोंछ कर अवरुद्ध कंठ से उत्तर दिया, गत संध्या ही तो गण परिषद ने आर्य पृथुसेन को सांगल के सर्वश्रेष्ठ खड़गधारी का सम्मान दिया है, इसमें मेरा क्या दोष? हाँ, प्रबुद्ध शर्मा ने कौतिक से समर्थन किया, वह आयुष्मान तुम्हारे प्रति सम्मान प्रदर्शन का अवसर पाने के लिए आचार्य पुत्र रुद्रधीर का रक्त बहाने को तत्पर हो गया, तुम उसका आदर न करोगी? भद्रे मद्र रक्त कृतघ्न नहीं होता। प्रबुद्ध का बलिष्ठ हाथ अपने दोनों कोमल करों में अनुराग से थाम कर दिव्या ने प्रश्न किया, तात, आयुष्मान पृथ्वीसेन ही वह युवक थे, इसी कारण महापृतव्य उनसे खिन्न है? शिवका के ऊपर होने और जनसमूह के उमड़ आने से मैं कुछ जान न पाई। हाँ हाँ जाओ, स्नेह से दिव्या को अंक में लेकर अंतःपुर के द्वार की ओर बढ़ते हुए उन्होंने कहा, कोई आश्चर्य नहीं, शिवका रूढ़ शिवका वाहकों की ओर कब देख पाते हैं? भद्रे, दासी से मेरे लिए स्नान का आयोजन करने के लिए कहो, देखो ना, स्वेद से मार्ग की धूल शरीर पर जम गई है। पृथुसेन के लौट जाने पर दिव्या उसके आगमन का समाचार और प्रयोजन तुरंत ही तात धर्मस्य के सम्मुख न कह सकी। संध्या हो गई और महापंडित अनेक कार्यों में व्यस्त होकर रात्रि के प्रथम प्रहर तक अभ्यागतों से घिरे रहे। दिव्या के मन में वह प्रसंग निरंतर बना रहा। अन्य सब विषयों से ऊपर वही प्रसंग उठा था। मन में दुविधा सी अनुभव होने लगी। उसके अनेक कारण थे। महापृथ्वी विष्णु शर्मा का व्यवहार, घटना से स्वयं अपना संबंध, गत संध्या आए अभ्यागतों के समाज में आपानक के समय उसने इस विषय का प्रसंग सुना था। वह जानती थी समाचार तात तक पहुंच चुका था। समाचार कहने की अपेक्षा वास्तव में वह उस विषय में तात का मत ही जानना चाहती थी। दिव्या की उस प्रसंग के प्रति अपनी चिंता ही दुविधा का कारण बन गई। यदि विशेष विचार से पूर्व ही समाचार तात के सम्मुख कह दिया जाता तो कोई बाधा न होती। अब निरंतर मनन करते रहने से ही उसका बोझ बढ़ गया और बाधा अनुभव होने लगी। न कहना भी उचित न था। उसने न्याय का आश्वासन दिया था तो उपेक्षा कैसे कर सकती। उसने न्याय का आश्वासन दिया था तो उपेक्षा कैसे कर सकती। एक प्रकार से वचन देना ही तो हुआ। अन्याय क्यों हो। न्याय अन्याय के प्रसंग से नित्य ही उसके कान भरे रहते थे। उसने कभी उस ओर ध्यान न दिया, परंतु इस प्रसंग में वह अपेक्षा न थी। दिव्या प्राय संध्या ही प्रसाद के उद्यान में प्रपितामह पितव्यों और महिलाओं की गोष्ठियों में उपस्थित रहती थी। वृद्धजन और कुल स्त्रियां कला में उसकी अद्वितीय क्षमता के लिए साधुवाद देकर आशीर्वाद देते थे। अभिजात युवक और कुल स्त्रियां उसकी स्तुति करती थीं। उस प्रशंसा में उसे उत्साह और संतोष होता था। आर्य रुद्रधीर ने उस विषय में कभी कुछ न कहा था। इससे दिव्या को संतोष ही था। उनसे साधुवाद पाने अथवा उन्हें उत्तर देने से उसे असुविधाजनक संकोच अनुभव होता था। वही बात आर्य मारिश के संबंध में थी। एक दिन उन्होंने विचित्र ही बात कह दी थी, भद्रे तुम्हारी कला तुम्हारी आकर्षण शक्ति का निखार मात्र है, जो नारी में सृष्टि की आदि शक्ति है। अनैतिकता और अनाचार के समर्थन का अपवाद पाए मारिश के इन शब्दों, उनके स्वर और नेत्रों के भाव से दिव्या को आशंकामय रोमांच हो आया था। मारिश की बात दिव्या को प्राय स्मरण हो जाती। वे शब्द अर्थगर्भित थे। मन ही मन दिव्या उनके अर्थ, उनकी गूढ़ता और व्यंजना को सोचती रहती। उन शब्दों में माधुर्य, गर्व, आशा और स्फूर्ति थी। परंतु उस अव्यवस्थित अपवाद के पात्र स्थान भ्रष्ट युवक के सामीप्य से संकोच और आशंका अनुभव होती थी। वह सोचने लगती, सर्वश्रेष्ठ खड़गधारी आर्य पृथ्वीसेन ने मेरी कला के विषय में मत प्रकट नहीं किया। शिविका के प्रसंग में उनका खड़ग खींच लेना, वही उनका मत था। दिव्या ने दुविधा और संकोच के कारण तात धर्मस्य के मध्याह्न विश्राम के समय एकांत देख उनके कक्ष में प्रवेश किया। महापंडित पर्यक पर उपधान से पीठ टिकाए बैठे थे। दिव्या ने पितामह के पिंगल केसों को सहलाते हुए पृथ्वीसेन के आने का समाचार कहा और प्रवाह में महापृथ्वी विष्णु शर्मा के व्यवहार की बात कह गई। धर्मस्य माथे पर हाथ रख सब सुनते रहे। फिर दिव्या के मौन में उत्तर की प्रतीक्षा अनुभव कर बोले, बाले अब तो देवी मल्लिका अपने अवसाद से मुक्त लाभ कर कला की आराधना में रत हो गई है ना। हाँ तात, दिव्या ने उनके केसों में दृष्टि गड़ाए उत्तर दिया। अब उनके प्रसाद में नित्य नियम से समाज होता है। नवीन शिष्याएं भी उन्होंने स्वीकार की हैं। संतति का शोक मनुष्य को निषत्व कर देता है। धर्मस्य ने दीर्घ निश्वास लिया। हाँ, अब मल्लिका किस शिष्या को अपने आसन का उत्तराधिकारी बनाने की आशा कर रही है। क्या रुचिरा की प्रतिभा उनकी किसी अन्य शिष्या में है? मल्लिका तुम्हें और अपनी पुत्री को अपने दो नेत्र के समान ही समझती रही, संभवतः माधुलिका को, परंतु उससे देवी महत्वपूर्ण संभवतः माधुलिका को, परंतु उससे देवी पूर्ण संतुष्ट नहीं है। तात, माधुलिका में गति का लास्य और लाघवता नहीं ना? सत्य है बाली, मल्लिका की उत्तराधिकारिणी का उनके समान ही प्रतिभाशाली होना सुगम नहीं। प्रकृति में क्रमसम रूप में नहीं चलते। मल्लिका अपनी गुरुदेवी इंद्रा से कहीं आगे बढ़ गई, जन इंद्रा को भूल ही गया। दिव्या का मन विकल हो रहा था। जिस महत्वपूर्ण प्रश्न को उसने कठिनाई से तात के सम्मुख निवेदन किया था, उस ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। उसने प्रश्न किया, हाँ तात, धर्म स्थान के सम्मुख तो सभी नागरिक समान हैं। अपने माथे पर रखा हाथ प्रपोत्री के सिर पर टिकाकर विनोद के स्वर में उन्होंने उत्तर दिया, बाली, माला गुंथन, तूलिका लेखन और नेत्र वीणा कर तुम किन नई ग्रंथियों में उलझ रही हो वत्स? विनोद का स्वर उनका स्वतः ही बदल गया। दिव्य, एक महाराज पौरव का धर्म स्थान था, एक विजयी मिलिंद का और एक कुलगढ़ के राज्य का धर्म स्थान है। कुछ क्षण मौन रहकर वे बोले, धर्मस्थान कोई स्वयंभू और स्वतंत्र वस्तु नहीं है, वह केवल समाज की भावना और व्यवस्था की जिह्वा है। इतने समय पर्यंत न्याय की व्यवस्था देते रहने से मैं यही समझ पाया हूँ कि न्याय व्यवस्थापक के अधीन है। पूर्ण स्मृति तात के समय पौरव वंश और उनके सामंतगण के विचार और उनके अधिकार और शक्ति की रक्षा का विधान ही न्याय था। विजयी मिलिंद के समय इन सब का अधिकार च्युत हो जाना न्याय था और महाराज मिलिंद और उनके समर्थक सामंत वर्ग और उनकी स्थिति और अधिकारों की रक्षा न्याय था। फिर मद्र राज्य में तथागत के धर्म की भावना ही न्याय हो गई और यज्ञ में पशुबलि का पूर्ण कार्य अपराध हो गया। मध्य के वर्तमान कुलगण के राज्य में कुलों की सत्ता व्यवस्था का आधार है, वर्णाश्रम पुनः मान्यता पा रहा है। अपने प्रश्न का उत्तर ना पाकर दिव्या ने पुनः प्रश्न किया, परंतु तात, आर्य प्रेस्त का कुल दासत्व से मुक्त हो चुका है। आर्य आयुष्मान पृथ्वीसेन को गण ने सम्मानित किया है।